नमस्कार। मार्गदर्शन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ कुछ एडवोकेट्स हैं, कुछ जजेस हैं, जिनकी पेशा के बारे में अगर हम बात करें वो बहुत कुछ प्रमाण के ऊपर निर्भर करता है। अगर आपके पास प्रमाण है तो आप सही है, अगर आपके पास प्रमाण नहीं है तो फिर आप गलत है। लेकिन ये सब जो करते करते कभी कभी उनको गलत का साथ भी देना पड़ता है, क्योंकि ये मजबूरी है पेशा की। तो ऐसे समय में क्या उनके मन कभी उनको कचोटता है? क्या उनकी आत्मा उनको गलत रास्ता से जाने से बचाने का कोशिश करता है? कभी उनको आत्मा उनकी दुखी होती है? इसी के बारे में बात करेंगे, और बात करेंगे कि स्पिरिचुअलिज्म एक एडवोकेट को, एक जज को अपने काम में किस तरह से मदद कर सकता है। और इसके लिए हमारे साथ आज उपस्थित है राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी कमलेश दीदी। आइए उनका स्वागत करते हैं। दीदी नमस्कार, आपको स्वागत है। दीदी, जैसे हमने पूछा कि इनका काम, जैसे जहां तक मुझे मालूम है, बहुत कुछ डिपेंड करता है कि प्रमाण के ऊपर, तो जबकि उनको कभी कभी पता होता है कि ये आदमी गलत है लेकिन उसके पास प्रमाण नहीं है, तो इनका पेशा का जो जरूरत है कि वो प्रमाण ऊपर विश्वास करेगा, तो हो सकता है कि कभी कभी उनके मन के भीतर बहुत दुख होता होगा, कभी मन उनका परेशान होता होगा, तो इस समय आप स्पिरिचुअल लीडर के हिसाब से, गुरु के हिसाब से उनको क्या एडवाइस दे सकते हैं, जैसे कि वो अपना पेशा भी ठीक से करे लेकिन गलत इंसान भी ना बने।
ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के अंदर आप सभी ज्यूरिस्ट विभाग के आए हुए भाइयों का बहुत स्वागत है। और ये विद्यालय एक ऐसा है जहाँ पर कोई भी विभाग का व्यक्ति आता है, उसके हर प्रश्नों का हल भी मिलता है, उसकी समस्याओं का समाधान भी होता है और उसके संदेह को भी मिटाया जाता है। अगर वो इसमें घुसकर इस आध्यात्मिकता की ओर जाने की कोशिश करें और यहाँ जो शिक्षा दी जाती है वो शिक्षा ले, तो वो इन सब बातों को हल प्राप्त कर सकता है, क्योंकि इस विद्यालय का पढ़ाने वाला स्वयं परम शिक्षक, परम पिता परमात्मा है। इसका कुछ पढ़ाई भी है, कुछ लक्ष्य भी है।
पूरे विचार प्रक्रिया में वकील की, वकील से ज्यादा दायित्व है विचारपतियों का, और विचारपतियों के ऊपर हमेशा मानसिक दबाव रहता ही है। जब भी वो व्यवहार करता है विचारपति किसी मुवक्किल से या वकील से, तो उसी व्यवहार में आध्यात्मिकता का कितना और कहां तक उसका प्रक्रिया, उसका व्यवहार होना चाहिए?
एक विचारपति होता है ना, सबसे श्रेष्ठ कौन सा माना जाता है? जिसके विचार पॉजिटिव हो, जिसकी भावनाएं श्रेष्ठ हो। अगर वो विचारपति अपनी श्रेष्ठ भावना रखता है और शुभ भावना का उपहार सबको दे दे, उस उपहार से जिसको जो दे रहा है वो खुशी पालेगा, बजाय झूठ सच इधर उधर करने के, अगर शुभ भावना उसके प्रति रखे और श्रेष्ठ विचार अपने मन से निकाले और उसके लिए शुभ कामना करे, तो वो भी उसके काम में आएगी और वो उसको ऐसी दृष्टि से देखेगा कि ये विचारपति वास्तव में बहुत अच्छा है, लेकिन उसके विचार खुद गलत है। विचारपति माना ही जज, एक जज को इतने सुंदर जजमेंट की सीट पर होना चाहिए, इतने सुंदर विचारों में रहना चाहिए, बिल्कुल निष्पक्ष भावना। और वो जब आएगा जब इसकी भावनाओं में श्रेष्ठता होगी। कोई अपराधी भी तो उसका भाई है ना, कोई पापी भी तो भाई है। गांधी जी ने क्या कहा है? पाप से घृणा करो पर पापी से घृणा मत करो। तो उसकी भावना इतनी श्रेष्ठ और महान होनी चाहिए, और वो होंगी थोड़ा स्पिरिचुअलिटी उसके अंदर आएगी, तभी होगी, तभी वो दूसरे को भी दे सकता है, वकील को भी और अपराधी को भी सिखा सकता है, अपना माहौल चेंज कर सकता है, सब उसके हाथ में। देखिए, एक वकील होते हैं, करोड़ रुपया कमा लेते हैं, किसके बस? इसका मतलब नहीं बहुत पढ़े लिखे ऊंचे हैं, नहीं, लोभ के बस। ऊंचे हैं तो कमाते हैं, पर बहुत है बहुत लोभ के बस, और बहुत अपनी भावनाएं नेगेटिव करके करोड़ों करोड़पति बन जाते हैं। एक वकील है जो विचारवान होते हैं, ठीक होते हैं, सही होते हैं, जिनकी कुछ भावनाएं पॉजिटिव होती है, वो साधारण रूप से चलते हैं, मिडिल क्लास में चलते हैं। पर मिडिल क्लास में चलना अच्छा है, बजाय उनकी होड़ करना जो आज तो करोड़पति है पर कल वो रोड़पति बन सकता है, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि कर्मों की सजा निश्चित है।
यदि कि अच्छा कर्म करके वो करोड़ों रुपया नहीं कमाया जा सकता है, या पैसा कमाना गलत है?
गलत नहीं है, ठीक है, पर सही ढंग से करोड़ों रुपया कमाना आज की दुनिया में मुश्किल
नहीं है,
वो बेढंग तरीके से ही कमाती है, नेगेटिव रूप से कमाती है पैसा, वो सही नहीं है।
अच्छा,
और सही ढंग से कमाएंगे तो लोग तो भिखारी है बेचारे, गरीब है, कितने दुखी है, अशांत है, और आप करोड़ों में खेल रहे हो, क्या जरूरत है? उनके अंदर तो भावना आएगी दान की, आप दान करिए, महादानी बनिए, दूसरों के दुख को दूर करिए।
एक तो न्याय प्रक्रिया में हम सब है कि जो कोर्ट से राय मिलता है, लेकिन एक बात, जब कोर्ट में कोई हार जाता है, वो समझता है कि मेरे को नहीं मिला, तो फिर वो बोलता है कि एक डिवाइन जस्टिस है, ऊपर से उसको न्याय मिलेगा। ह्यूमैनिटी के अंदर ये क्यों नहीं है कि सिर्फ सच्चा कर सच काम करेगा, लेकिन वो बुरा काम कर रहा है?
देखो, ऐसा नहीं है कि कोई सच्चाई से नहीं चल रही है, 20% आपको ऐसे भी मिलेंगे कि वकालत के पेशे में भी वो सच्चाई से चल रही है, सब रजिस्ट्रार में भी सच्चाई से चल रही है, वो कभी भी कोई रिश्वत नहीं लेते हैं। हमारे पास एक सिस्टर रजिस्ट्रार है, उसको इतना लालच देते हैं लोग, पर उसने कसम खाई हुई है कि मैं एक पैसा नहीं लूंगी, भले ही उसको मारने को भी तैयार हो गए हैं, लेकिन परमात्मा उसकी रक्षा करता है, और सारे उसके ऑफिस के लोग उसे देवी की तरह मानते हैं। ऐसा नहीं है कि सब झूठ में ही चलते हैं, सब पापी करते हैं, ये पैसा ही पाप का है, ऐसा नहीं है। आप जिस भी पैसे में रह करके ऑनेस्ट भी हो सकते हैं और बेईमान भी बन सकते हैं। आप जिस भी पैसे में रहेंगे, आपको हार भी होगी, जीत भी होगी, क्योंकि लाइफ इज गेम, लाइफ इज ड्रामा, लाइफ इज जर्नी। गेम में ये नहीं होता है कि आप सदा जीतते ही रहे, कभी हारेंगे भी कभी जीतेंगे। तो जो जीत करके मुस्कुराए तो वो क्या जिंदगी है, लेकिन हार करके भी जो मुस्कुराए वही असली जिंदगी है। हर चीज में आपको हर्षित रहना है। अगर मैं 10 बार जीत गया, 1 बार हार गया, तो रिवेंज की मन में भावना नहीं आनी चाहिए, बदले की। ये मेरा पार्ट था, 1 बार हारा, मैं फिर जीतूंगा। एक खिलाड़ी खेल में हारता है तो फिर खेलना थोड़ी बंद कर देता है, वो तो खेलता जाएगा, अगली बार जीतूंगा। तो ये दुनिया भी एक ड्रामा है, और हमारा जीवन भी एक यात्रा है, हम चल रहे हैं, खेल रहे हैं, इस नाटक के अंदर पार्ट प्ले कर रहे हैं, तो हम जैसा चाहें वैसा पार्टधारी स्वयं बन सकती है।
उनका प्रश्न था कि भगवान ने ऐसा बनाया ही क्यों, कि कुछ लोग अच्छा है कुछ लोग बुरा है, क्यों भगवान ऐसे बनाया? वो चाहे तो सबको अच्छा बना भी सकते थे।
लेकिन फिर तो दुनिया ही कुछ नहीं रहेगी, दुनिया किसका नाम है? 2 संप्रदाय होती है, एक दैवी संप्रदाय, एक आसुरी संप्रदाय। फिर तो जो सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग नहीं चलेगा। आप कहेंगे भगवान ने हमें बूढ़ा क्यों किया, जवानी रहने दे, ये कोई क्वेश्चन नहीं है। मनुष्य बचपन होगा, जवान होगा, किशोर होगा, वृद्ध होगा। आप कहेंगे मैं बूढ़ा ही रहूं या मैं बचपन ही रहूं, हो नहीं सकता है। आप कहेंगे सवेरा ही रहे, दोपहर नहीं आए, शाम नहीं आए, रात्रि नहीं आए, ये हो नहीं सकता है। तो दुनिया उसी का नाम है, उसी चक्र का नाम है, जिसमें ये 4 चक्रव्यूह घूमते हैं, सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग। कलयुग जब आएगा तो सब तमो प्रधान था, 80% तमो प्रधान था और 20% आपको सत्व प्रधानता दिखाई देगी, ना के बराबर। पर परमात्मा का तो ड्यूटी है ना कि तमो प्रधान को सत्व प्रधान बनाना, नहीं उस भगवान को कौन मानेगा? पते अगर अंधकार नहीं हो तो उजाले की कोई वैल्यू है? अगर पाप नहीं हो तो पुण्य की कोई वैल्यू है? तो पाप का जब अति होता है, अंत होता है, तभी तो परमात्मा को पुकारते हैं। उसकी वैल्यू क्यों होती है? वो आकर कुछ करता है, पुकारा किसको जाता है? जिसने कुछ काम किया है। आज सब दुनिया में लोग इंसान पुकार रहे हैं, ईश्वर को क्यों पुकार रहे हैं? उसने पतितों को पावन बनाया, तमो प्रधान को सत्व प्रधान बनाया, कलयुग से सतयुग लाया, पुरानी दुनिया से नई दुनिया किया, उसका ये ड्यूटी है। तो वो ड्यूटी करने के लिए भगवान को भी आना पड़ता है। तो ये सृष्टि एक नाटक है, ड्रामा है, वो भी ऐसा नहीं है कब फिक्स हुआ, कैसे बना, अनादि एंड अविनाशी है, चक्र चलता ही रहता है। इसी को समझने के लिए यहाँ पर 7 डेज का क्लास कराया जाता है, 7 घंटे। आप समझेंगे तो सारी सृष्टि की विषय में, आदि मध्य अंत की विषय में आपको जानकारी हो जाएगी। हर एक की बायोग्राफी को आप समझ लेंगे, सेल्फ रियलाइजेशन कर लेंगे, गॉड रियलाइजेशन कर लेंगे, आध्यात्मिक चिंताधाराएं आपके जीवन में आ जाएंगी और अपने जिस देश में रह रहे हैं रहकर आप सक्सेस होते जाएंगे। ऐसा हमारा तो अनुभव है।
बिल्कुल। दूसरा ये भी है कि हर ड्रामा में, अगर भगवान ये ड्रामा बनाए हैं, हर ड्रामा में तो खाली हीरो हीरोइन हो गए, जरूरी नहीं।
इसलिए इसमें वैरायटी पार्ट है, लेकिन आप किसको देखिए? माय पार्ट, डू और डाई, मुझे क्या करना है, मुझे इस संसार से मर के भी अपना इतना सुंदर पार्ट बजाना है जो दुनिया देखती रहे, दुनिया के आगे मैं आदर्श हो जाऊं। हमें दूसरों के पार्ट को नहीं देखना है, अपने को देखना है।
What is the responsibility of lawyers and how they maintain the spiritualism while dealing with the cases? Similarly, what is the role of the judge and maintain the spiritualism while deciding the cases?
उसमें आध्यात्मिकता का क्या रोल है? यही बोल रहे हैं ना, सिविल केस में, जो सिविल केस में जाती हैं वो आध्यात्मिकता को जल्दी ग्रहण कर लेंगे और जो क्रिमिनल केस में रहते हैं उनको थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि दुनिया के अंदर क्रिमिनलिटी बहुत खराब है और सिविल फिर भी थोड़ा सिविल है,
चलेगा।
तो आप फिर भी और ही जल्दी स्पिरिचुअलिटी को ग्रहण कर लेंगे, आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी। अनुभव करिए, जो स्पिरिचुअल बातें हैं कोई बोलने की और पढ़ने लिखने की नहीं है। लाइफ स्पिरिचुअल हो जाने के बाद ये प्रैक्टिकल जीवन को बनाने की बात है और अनुभव की बात है। आप अनुभव करिए, आप एकदम 7 दिन या 15 दिन के अंदर सिविल केस वाले स्पिरिचुअल में आकर अपने जीवन को अनुभव से भर सकते हैं और अनेक प्राप्ति कर सकते हैं। अनुभव करिए।
हम लोग का लाइफ स्ट्रेसफुल भी होता है, बिजनेस भी होता है, सब टाइम बिजी रहते हैं, हम टेंस में रहते हैं। तो हाउ स्पिरिचुअल जिम विल हेल्प अस टू लीड ए रेगुलर लाइफ इन ऑर्डर टू हेल्प अदर्स?
टेंशन सिर्फ आपको नहीं है, आज सारी दुनिया के लोगों को टेंशन है, चाहे वो जज है, चाहे वकील है, चाहे डॉक्टर है, चाहे, और सब दुनिया के लोग बिजी हैं, व्यस्त हैं। किसके पीछे भाग रहे हैं? पैसे के पीछे। आज है ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो उसी बिजी लाइफ में आपके अंदर ये दृढ़ संकल्प आना चाहिए कि अब मैं थोड़ा सा समय निकालूं स्पिरिचुअल जीवन बनाने के लिए। पहले आप ये संकल्प पैदा करेंगे मन के अंदर, फिर आप उस स्थान को ढूंढेंगे। आध्यात्मिक ज्ञान तो सिर्फ सुपर पावर परमात्मा के सिवाय कोई नहीं दे सकता है, और ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाला है ही परमात्मा। मैं अभी पढ़ रही हूँ और जो पढ़ा है वो आपको बता रही हूँ। तो आप उस बिजी लाइफ से 1 घंटा निकाल सकेंगे, क्या सोचेंगे? अगर आपके जीवन का 23 घंटा होता तो काम चलता ना, और अगर 25 घंटा होता तो भी आप बिजी रहते। तो आप ये सोचिए अंदर कि मेरी लाइफ का 23 घंटा है, बिजी रहने का घर के लिए या अपने वकालत करने के लिए, एक घंटा मेरे स्पिरिचुअल लाइन का है जिससे मैं विल पावर अपने अंदर भरूं और कुछ भी कार्य कर सकता हूं। जब ये सोचेंगे तब 1 आवर से 5 मिनट निकाल लीजिए तो आपको 1 घंटा निकल जाएगा जरूर। 1 घंटा, आधा घंटा, पौना घंटा, कुछ भी आप समय निकालेंगे तो धीरे धीरे जब इधर 1 घंटे का अनुभव 23 घंटे से अच्छा होने लगेगा तो आप 23 घंटे को कंट्रोल कर सकेंगे। आपके ऊपर है, मनुष्य के पास कोई चाह है कि मैं ये करूं तो राह निकल आएगी। आपके अंदर चाह है कि मैं स्पिरिचुअल के लिए टाइम निकालूं पर बहुत व्यस्त रहता हूं, तो चाहना तो है, जिज्ञासा है, पर व्यस्तता में नहीं निकालते हैं। तो आप उसी व्यस्तता के अंदर से आप देखिए अपने खाने के लिए समय निकालते हैं, नहाने के लिए निकालते हैं, कोई गेस्ट आ जाता है उसके लिए समय निकालते हैं, सब कुछ समय निकालते हैं। अगर इसको भी इतना कंपलसरी समझ लें, जरूरी समझ लें कि ये मेरा फर्स्ट कॉलम है आध्यात्मिक शक्ति लेना, आध्यात्मिक ज्ञान लेना, तो आप इसके लिए भी 1 घंटा निकाल लें। क्योंकि परमात्मा तो अभी गेस्ट होकर आया है और वो आपको कुछ देने के लिए आया है, और जब मेहमान आपके घर आए गेस्ट और आप उसकी बात नहीं सुनेंगे, उसे पूछेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, फिर वो जब जाने लगेगा तो आप कहेंगे रुको 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 अभी मैं आता हूं, तो कुछ नहीं मिलेगा, हर टाइम पर चला जाएगा। 75 वर्षों से परमपिता परमात्मा हमारे भारतवर्ष के अंदर मेहमान बनकर इस सृष्टि पर आकर ये कार्य कर रहा है, अपने बच्चों को आध्यात्मिक शक्ति दे रहा है, उनका मनोबल बुद्धि बल बढ़ा रहा है, हर एक को, बच्चे बूढ़े जवान, महिलाएं विधवाएं, सबको शक्ति प्रदान कर रहा है। तो आप क्यों नहीं निकाल करके ले सकते हैं? समय तो आपके हाथ में है ना, समय के हाथ में आप मत हो जाइए, पर अपने हाथ में समय रखिए तो आप उसको निकाल लेंगे।
इसी के साथ दीदी आज का कार्यक्रम को हम यही रोकेंगे और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद अपना प्रश्नों को इस फोरम पर लाने के लिए, धन्यवाद। तो दर्शक बंधु, ये था हमारा आज का कार्यक्रम। आशा करते हैं कि आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया होगा और इसमें से कुछ सीख आप जरूर लिए होंगे। इसी के साथ आज का कार्यक्रम को यही रोकते हैं, फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार, नमस्कार।